ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सप्तम अध्याय श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम् माम अजम अव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगो माया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगो माया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगो माया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। न तो अहम् मैं प्रकाशः प्रकट सर्वस्य सबों के लिए योग माया अंतरंगा शक्ति से समावृतः आच्छादित मूढ़ मूर्ख अयम यह न नहीं अभिजानाति समझ सकता है लोकः लोग माम मुझको अजन्मा को अव्ययम् अविनाशी की। ये श्लोक का अनुवाद, मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपने अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। आप भी बोलिए, मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तो इस श्लोक का अर्थ आप सब समझ गए हैं, समझे? कोई मुश्किल नहीं है? कोई भगवान कौन बोल रहे हैं? ये वाणी किसका है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही भगवान है। तो भगवान यहां कह रहे हैं नाहं प्रकाशः सर्वस्य, अर्थात मैं सब जगह सभी के लिए प्रकाश नहीं होता हूं। नाहंग ना अहंग प्रकाश सर्वस्य, क्यों? योग माया समापिता, क्योंकि मैं अपने योग माया के द्वारा आच्छादित रहता हूं और उस कारण मूढ़यं ना भी जानाति। मूढ़ का मतलब मूर्ख, जो मूर्ख हैं वो कभी भगवान को जान नहीं पाते हैं, भगवान को कभी भी नहीं जान सकते क्योंकि मूर्ख है। जैसा अंधा जैसा सूरज का ज्योति दर्शन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही जो मूढ़ अर्थात निर्बोध है, मूर्ख है। तो ये मूर्खता क्या, कौन सी मूर्खता है? ये भौतिक जगत की मूर्खता नहीं है, ये आध्यात्मिक मूर्खता है। जैसे एक प्रकार के मूर्ख कैसे होता है? मायाया अपढ़ित ज्ञान, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान था, परंतु माया सब चुरा के ले गए। मायाया अपढ़ित ज्ञान, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे आदमी हैं और कुछ ऐसे आदमी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान है भौतिक दृष्टिकोण से, परंतु भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं जानते। ये तो नहीं कुछ भी नहीं जानते हैं, ये असल में भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो उनके बारे में कैसा समझना चाहिए? वो तो मूर्ख नहीं है। जैसे भगवान यह कह रहे हैं मूढ़यं मा ना भी जानाति, जो मूर्ख है वो हमको नहीं जान सकते हैं, मूढ़यं ना भी जानाति। परंतु ये जो भगवान को नहीं जानते हैं परंतु बहुत विद्वान है भौतिक दृष्टिकोण से, कैसा है? बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, डीफिल वगैरह कुछ, बहुत कुछ उपाधि है और बहुत साल पढ़ाई लिखाई भी किया है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर, परंतु भगवान के बारे में वो नहीं जानते। तो उनके बारे में कैसे सोचना है? क्या हम सोचेंगे उसका क्या हुआ है? असल में तो मूढ़ नहीं है, परंतु उसका जो ज्ञान जो था सब खो बैठे हैं, माया उसको चुरा कर ले गई है। कोई आदमी बहुत धनी है, बहुत रुपया है, परंतु उसका सब अगर चोरी हो गया तो क्या होता है? एक समय वो धनी था परंतु वो गरीब हो गया क्योंकि सब चोरी हो गए। तो वैसे ही जो विद्वान है परंतु भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, वो कैसे व्यक्ति है? माया उसका ज्ञान चुरा के ले गया है। मायाया अपरहित ज्ञान, तो ऐसे ही मूढ़यं ना भी जानाति, जो मूर्ख है वो हमको नहीं जानते हैं। कैसे नहीं जानते हैं? कि लोको माम अजम अव्ययम, कि मैं अजम 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 का मतलब जन्म रहित तो हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। परंतु कोई बोल सकता है आप महाराज आप क्या कह रहे हैं, हम तो मथुरा में भगवान को जन्मस्थान देखा है, कंस की कारागार जो था पहले भगवान का जन्म हुआ है, पंडा लोग हमको ले गया था, दिखाया था, बोला यहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो ये कैसी बात है? तो इसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि हां भगवान जन्म लेते हैं परंतु वो जन्म असल में जन्म नहीं है, वो लीला है, भगवान को जन्म लेने का जरूरत नहीं होता है। जन्म का मतलब क्या है? तो क्या होता है जन्म का मतलब क्या है? एक नया शरीर प्राप्त होना। और मृत्यु का मतलब क्या होता है? पुराना शरीर को त्याग देना। तो हमारे लिए ओ होता है, हमारा एक नया शरीर मिलता है, इस भौतिक जगत का एक शरीर मिलता है, भौतिक शरीर मिलता है। असल में हम भौतिक नहीं है, हम चिन्मय हैं, परंतु इस भौतिक जगत में आने के कारण हमें एक शरीर मिला है, ये जो शरीर है। तो जब हमको ये नया शरीर मिला था उसका मतलब हुआ था कि मेरा जन्म हुआ, और जब मैं ये शरीर जब पुराना हो जाएगा, कुछ काम के लायक नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जब ये शरीर काम के लायक नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमको ये शरीर छोड़ के चले जाना होगा। तो जब हम शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मृत्यु कहा जाता है। ऐसे देखिए आदमी लोग, बहुत सारे आदमी मृत्यु के बारे में कुछ बोलना सोचना नहीं चाहते। मृत्यु उनके लिए एक बड़ा रहस्य है, परंतु जो भगवान की वाणी श्रवण करते हैं और भगवान की वाणी को समझने का कोशिश करते हैं तो उनको क्या पता चलता है? जैसे भगवद गीता का शुरू शुरू में ही भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को कि देखो, ये आत्मा जो है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। और असल में अर्जुन, तुम तुम्हारा आत्मा हो, ये शरीर नहीं। केवल तुम ही नहीं, जितने सारे आदमी हैं, ये कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे थे। तो उस समय भगवान क्या अर्जुन को समझाया? देखो, ये जो अपना स्वपक्ष में और विपक्ष में जितने सारे राजाओं खड़े हुए हैं, जितने लड़ाई करने के लिए सैनिक आए हैं, ये तुम मानो तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे स्वजन हैं, तुम्हारे बंधु हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारा पितामह है, परंतु असल में ये सब शरीर का परिचय है, ये सब शरीर का ही परिचय है। परंतु असल में हमारा असल परिचय क्या है? हमारा असल परिचय है आत्मिक, आत्मा ही हमारा परिचय है। मैं कौन हूं? जब तक हम सोचेंगे कि मैं मेरा शरीर हूं, तब तक मैं अज्ञान में हूं। और जब हम जान लेते हैं कि हम हमारे शरीर नहीं हैं, परंतु ये शरीर को जो चेतन बनाया, देखिए भौतिक वस्तु में चेतना नहीं रहता है, जो भौतिक वस्तु जो है उसमें चेतना नहीं रहता है। जैसे ये पिलर है, इसमें चेतना है? ये जो छत है, इसमें चेतना है? ये जो जमीन है, चेतना है? ये जो कैमरा है, उसमें चेतना है? ये माइक्रोफोन, चेतना है? जहां मैं बैठा हूं उसमें चेतना है? नहीं। परंतु आपको चेतना है ना? आपका चेतना है, क्यों है ये चेतना? कैसे क्यों है? क्योंकि शरीर में आत्मा है, और जब शरीर आत्मा को छोड़कर चला जाता है तो क्या होता है? शरीर में चेतना रहता है? नहीं। तो जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तब शरीर से चेतना निकल जाता है, और उसके कारण शरीर को क्या होता है? हम कहते हैं कि शरीर का मृत्यु हुआ। तो मृत्यु का मतलब होता है आत्मा को अंतर्धान, इसलिए हम क्या कहते हैं? तिरोधान, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। और साधारण जय श्री श्री राधा मदन मोहन, और साधारण हिंदी में भी हम क्या कहते हैं? उनका शरीर छोड़ के चले गए, है ना? शरीर छोड़ के चले गए, तो कौन गया है? इसके बारे में अब तो बोलते हैं, शरीर छोड़ के चले गए हैं, देहांत हो गया है, ये सब हम कहते हैं, परंतु इस शब्द का अर्थ क्या है? मतलब क्या है ये कभी हम सोचे हैं? ये सोचना चाहिए। और ये समझाने के लिए भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं भगवद गीता में, ये शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारा स्वरूप है आत्मा। और आत्मा का स्थिति कैसा है, आत्मा का गुण कैसा है, आत्मा का प्रवृत्ति और या प्रकृति कैसा है? न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है न मृत्यु होता है। और भी कह रहे हैं भगवान कि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दाहति पावकः। अस्त्र के द्वारा इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, आत्मा के द्वारा, आत्मा को अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है। नैनं दाहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो नायं शोषयति मारुतः। तो ऐसे भगवान अर्जुन को आत्मा के बारे में भगवद गीता का शुरू शुरू में ही समझाया। और उसके पश्चात भगवान जब अपना परिचय अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, तब भगवान क्या कह रहे हैं? अहम अजम अव्ययम, मैं अज हूं, मेरा जन्म नहीं होता है। मेरा जो जन्म, जो भांति जो ऐसा मालूम होता है जन्म हुआ है, वो असल में मेरा लीला है। लीला का मतलब भगवान को जन्म लेना नहीं पड़ता है, परंतु भगवान ऐसे हमें कुछ शिक्षा देने के लिए या तो हमारे साथ प्यार के संपर्क स्थापन करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आकर ऐसे लीला विलास करते हैं ताकि भगवान को ऐसा मालूम होता है कि भगवान हमारे बहुत नजदीक है। भगवान भगवान नहीं है, वो हमारे बहुत प्यारे कोई व्यक्ति है। भगवान को जब हम भगवान के रूप में पहचान लेते हैं, तब भगवान के साथ प्यार का संपर्क स्थापन करना बहुत ही मुश्किल ही केवल नहीं असंभव होता है। क्योंकि भगवान के साथ कौन सा प्यार का संपर्क स्थापन करेंगे, क्योंकि भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने प्रभावशाली हैं, भगवान क्यों हमारे बारे में सोचेंगे? ये जो भगवान अपने बारे में सोचने का जो ये सुयोग हमें दे रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। और मैं उनके दास हूं, मैं हूं दास तुम्हारा। भगवान का भक्त का मनोभाव ऐसा होता है, मैं आपका दास हूं। तो ऐसे वैकुंठ में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भगवान है, ऐसे वहां दर्शन होता है कि भगवान भगवान है। और उस कारण भगवान के साथ जो संपर्क, वो प्यार के संपर्क नहीं बनता है, वो श्रद्धा और संभ्रम के संपर्क बनता है। परंतु जब भगवान, आप सोचिए, अगर भगवान कोई हमारे परेशान के एक बच्चे के रूप में जन्म लिया, तो बचपन से ही हम उनको देख रहे हैं, तो भगवान को ऐसे उस लीला में दर्शन करने से क्या होगा? बहुत नजदीक कोई मेरा बहुत प्यारे कोई व्यक्ति के रूप में भगवान का दर्शन होगा, है ना? क्योंकि देखिए, भगवान सर्वाकर्षक हैं, और भगवान एक साधारण मनुष्य के भांति जब हमारे सामने प्रतिभात होते हैं, तो ऐसे मालूम होता है कि भगवान कोई हमारे ही कोई है, और उनके साथ हम एक गहरा संपर्क स्थापन कर सकते हैं। ये भावना ही वृंदावन वासियों का था। ब्रजवासियों ने कभी नहीं सोचते थे कृष्ण भगवान है, वो सोचते थे कृष्ण कृष्ण है, हमारे बहुत प्यारक श्याम है, नंदलाला है, ये सोचते थे। उनका मनोभाव था कि अगर भगवान कृष्ण, अगर भगवान है तो भी क्या, ये कृष्ण हमारे नंदलाला अगर भगवान है तो उसमें क्या क्या गया। परंतु हम वैसे उनको देखना नहीं चाहते, मेरे लिए एक कन्हैया है, है ना। तो ये लीला, ये जो लीला है ये बहुत सुंदर लीला होता है। मतलब सुंदर का मतलब भगवान भक्तों के मन में आनंद प्रदान करने के लिए ऐसे लीला विलास करते हैं। एक बच्चा सा जैसे हम दामोदर लीला स्मरण कर रहे हैं। देखिए भगवान एक छोटा सा बच्चा के रूप में लीला विलास कर रहे हैं। कौन है? यशोदा मैया के लड़का, 4 साल का था कृष्ण उस समय। और मां यशोदा ने एक दिन कृष्ण को मां यशोदा के ऊपर बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आया क्यों? क्योंकि मां यशोदा को कृष्ण ने मां का दूध पी रहा था और उस समय मां यशोदा को, यशोदा मैया को याद आया कि आग में दूध गर्म हो रहा है तो ये दूध उबल कर गिर जाएगा। तो ये सोच याद होते ही मां यशोदा ने कृष्ण को अपने गोद से निकालकर उतारकर जमीन पर रखे और छोटा दूध संभालने के लिए। तो आप कृष्ण के भी मनोभाव देखिए, एक बच्चा का मनोभाव कैसा होता है, कितना कितना प्यार के साथ मां का दूध पी रहा था और देखो मां क्या किया, हमको ऐसे छोड़ के मां चले गए। बच्चा को क्या मनोभाव होता है उस समय? रोने लगता है कष्ट के कारण, मां देखो मेरा मां हमें छोड़कर चले गए। कृष्ण भी रोने लगा। तो कुछ समय तक रोया, रोने के बाद मां यशोदा ने, रोने के बाद कृष्ण ने, कृष्ण का तब गुस्सा आया। पहले रोया, रोने के बाद गुस्सा आया, देखो मेरा मां हमको ऐसे छोड़कर चले गए हैं, और वो भी क्यों गए हैं? अपना दूध संभालने के लिए। और वो दूध किसके लिए? दूध भी मेरे लिए था। और वो मां सोचा कि वो दूध से बहुत बढ़िया, दूध से बहुत बढ़िया मक्खन बनाएंगे। कोई गोपियां ने आकर मां यशोदा को पास शिकायत करते थे कि देखो तुम्हारा कृष्णा हमारा घर में जाकर मक्खन चुराता है। तो मां यशोदा को पता नहीं चला कि कृष्णा क्यों मक्खन चुराने के लिए जाएगा, क्योंकि अपना घर में तो कितना सारे मक्खन है। तो ऐसे गोपियां ने जब कंप्लेन करना शुरू किया तो मां यशोदा ने सोचा कि होगा शायद मेरा घर का जो मक्खन है वो उतना स्वादिष्ट नहीं है, और दूसरे जो मक्खन है गोपियां के घर में वो बहुत स्वादिष्ट होता है, उस कारण कृष्ण वहां जाके मक्खन चुराता है। अच्छा, इसके पीछे और एक बात भी आ जाता है, कृष्ण क्यों वहां जाकर मक्खन चुराते थे? देखिए कृष्ण का तो मक्खन का जरूरत नहीं है ऐसे, और कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण को तो चुराने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। कृष्ण देखिए सारे संसार का सारे मक्खन बनाया है। और कृष्ण देखिए दूध की सागर में लेते रहे हैं, उनका क्या मक्खन का कोई कम होता है क्या? तो कृष्ण क्यों मक्खन ऐसे चुराते हैं? और कृष्ण का चुराने का क्या जरूरत भी है, क्योंकि सारे संसार की सारे वस्तु तो कृष्ण का ही है, फिर भगवान क्यों ऐसे लीला कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल का मतलब है भक्त का जो मनोभाव है वो भगवान पूर्ण करते हैं। भक्त जो कुछ चाहते हैं भगवान वो पूर्ण करते हैं, भक्त का चाहना पूर्ण करते हैं। तो कोई गोपी ने एक दिन कृष्ण को कहती हुई सुना, मां यशोदा के पास कृष्ण बोल रहा है, मां मक्खन मेरा बहुत प्यारा है, मैं बहुत पसंद करता हूं। तो ये सुनने के बाद ये गोपी सोचा कि अगर कृष्ण का मक्खन इतना प्यारा है, अगर कृष्ण आकर मेरा घर में मक्खन खाता तो कितना अच्छा होता। तो ये मन में सोचा, किसी को बताया नहीं, परंतु कृष्ण तो अंतर्जामी है, उसका गोपी का मनभाव कृष्ण को पता चल गया। तो कृष्ण सोचा ठीक है, तुम जो चाहते हो कि मैं तुम्हारा घर में जाकर मक्खन खाए तो मैं तुम्हारा घर में जाकर जरूर मक्खन खाऊंगा। तो वो उस मन में केवल ये सोचा था, कृष्ण को तो बुलाया नहीं है? उस मन में ऐसे भावना हुआ और गोपी भी उसके बाद कुछ नहीं सोचा। परंतु चूंकि कृष्ण ने, गोपी जब ये चाहा कि कृष्ण आकर मेरा घर में मक्खन खाए, तो कृष्ण बोला ठीक है मैं तुम्हारा घर में जाकर मक्खन खाऊंगा। तो जब चूंकि कृष्ण को बुलाया नहीं तो कृष्ण ऐसे ही चले गए और घर में जाके मक्खन खाना शुरू किया। तो जब गोपी जब आकर देखा कि कृष्ण मक्खन खा रहा है तो वो सोचा कि ये क्या हो रहा है, देखो कृष्ण मेरा, वो भूल गया कि वो चाहा था कि कृष्ण उनका घर में आके, ये भी जोग माया के प्रभाव है। तो तब ये गोपी सोचा देखो कृष्ण मेरा घर में आकर मक्खन खा रहा है। तो गोपी ने बहुत ये उसका उनका मन में इतना आनंद हुआ कि वह सबके पास जाकर बताया और गोपियों के पास जाकर बताया कि देखो कृष्ण मेरा घर में ऐसे आकर ऐसे ऐसे मक्खन खाए। तो सारे गोपियां ने भी सोचने लगी अगर कृष्ण मेरा घर में आकर क्यों ना मक्खन खाए। तो तब से कृष्ण हर गोपियां के घर में जाकर मक्खन चुराना शुरू किया। चुराने का मतलब क्या है, उन लोगों ने चाहा तो कृष्ण गया जाकर खाना शुरू किया। तो ऐसे जब कृष्ण ने लीला विलास करना शुरू किया तो सब गोपियां ने आकर कृष्ण को मां यशोदा के पास आकर बोला देखो कृष्ण मेरा घर में जाकर मक्खन खाता है। तो उन्होंने ऐसे जो बताया तो उनका मनोभाव ऐसा था कि देखो कृष्ण मेरा मन कामना जो था उसको पूर्ण किया, मेरा घर में आकर मक्खन खाया। परंतु मां यशोदा का मनोभाव ऐसा हुआ कि तुम्हारा घर में जाकर कृष्ण क्यों मक्खन खाएंगे, क्या मेरा घर में क्या मक्खन का कमी है कोई। तो ऐसे वापस में कुछ बाघ युद्ध होना शुरू किया। तो और गोपियों ने भी बोला ठीक है तुम विश्वास नहीं कर रही हो, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं। मां यशोदा ने भी बोला हां तुम झूठ बोल रही हो। और मां यशोदा ने सोचने लगी कि कृष्ण तो सुबह से अब तक मेरा घर मेरा पास ही बैठा हुआ है, क्यों कब कृष्ण गया कि यह मक्खन चुराएगा। तो ऐसे जब सोचने लगा तो मां यशोदा ने सोचा शायद होगा कि मेरा घर का जो मक्खन है वो उतना स्वादिष्ट नहीं है। तो ये सोचकर मां यशोदा ने सबसे बढ़िया गाय चुने, उसको सबसे बढ़िया घास खिलाया और सबसे बढ़िया गाय से बढ़िया घास खिलाकर सबसे बढ़िया दूध निकला और वो दूध से मां यशोदा मक्खन बना रही थी। और वो मक्खन एक भांड में रखे थे। तो कृष्ण ने क्या किया, वो सोचा कृष्ण ने सोचा देखो मेरे लिए ही तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो मैं कर दिखाऊं तुमको। हाँ तो एक पत्थर लेके उसको वो पात्र को तोड़ दिया और तोड़कर उससे मक्खन खाया और सारा घर में मक्खन चिताया और बंदर को भी खिलाया। तब मां यशोदा ने जब आकर घर में आई तो देखा कि ऐसा अवस्था हुआ है। तो मां यशोदा को पता चला ये शायद कृष्ण का ही काम है। तब मां यशोदा का गुस्सा आ गया, देखो ये मैं कितना बदमाश हो गया, ये बच्चा है बचपन से इतना बदमाश हो गया है तो इसको कुछ सजा देना चाहिए, इसको संशोधन करना चाहिए, नहीं तो इसका बड़ा होने जब बड़ा होगा तो उसका आचरण एकदम ठीक नहीं रहेगा। तो ये सोचकर मां यशोदा ने हाथ में एक छड़ी लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिए उसको पीछे करा किया। तो ये तो आप जानते हैं, ये है दामोदर लीला। दामोदर लीला के बीच में बहुत सुंदर ये है भावना है, बहुत सुंदर लीला है जिससे जिसका वर्णन यह हुआ है कि इति दृक्ष लीला भेद आनंद कुंडे, ऐसे लीला विलास करके भगवान अपने भक्तों को एक आनंद कुंड में, कुंड का मतलब क्या होता है, कुंड का मतलब जलाशय। हरे कृष्णा, जय श्री श्री राधा माधव। परंतु ये कौन सी कुंड है, आनंद की कुंड है। एक आनंद की कुंड में इति दृक्ष लीला भीड़ आनंद कुंडे सघोषं निमज्जन्तम्। निमज्जन्तम् शब्द का अर्थ क्या है, निमग्न करना, डुबा देना, अवगाहन तो ऐसे ऊपर से पानी डालने और एकदम पानी में डुबा देते हैं। आनंद के सरोवर में भगवान भक्तों को ऐसे डुबा दिया, डुबाने के लिए अपना ऐसे लीला विलास करते हैं। तो ये जो ये लीला विलास करने के लिए भगवान एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। अगर जन्म नहीं लेता, अब ये विचार हम कर सकते हैं, भगवान अगर जन्म नहीं लिया, भगवान ऐसे सीधा वैकुंठ से आ गए हैं नारायण रूप में, तो मां यशोदा के उनके साथ ऐसे आचरण कर सकेंगे, फिर बोले कृष्णा आओ, कृष्ण के पीछे मतलब नारायण के पीछे छड़ी लेके भागने शासन करने के लिए ये अपना दूध पिलाने सकेंगे, नहीं। और तब तो एकदम ऐसा भाव हो जाएगा, ओ नारायण, जैसे देवकी का हुआ था। देवकी और वसुदेव जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब उनका मन में, जैसे मां का मन में अपना पुत्र के प्रति जब स्नेह का संचार होता है, वैसे ही एक अद्भुत स्नेह का संचार हुआ कृष्ण के प्रति, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। और साथ साथ की ऐसे दुर्भावना भी आ गया कि अब तो ये कृष्ण को कंस आकर मार डालेगा, इसको तो हत्या करेगा। तो ये जब सोचा इसको, तब मन में डर आया, भय हुआ। तो उस समय कृष्ण ने अपना मां को इस भय से बचाने के लिए और भय दूर करने के लिए कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप ग्रहण कर लिया, विष्णु रूप ग्रहण कर लिया। तो वो विष्णु रूप देखते ही मां यशोदा का मन, देवकी के मन में कैसी भावना हुआ, हे भगवान, आप कितने दयालु हो कि आप मेरे पुत्र के रूप में आप आए हैं। और वसुदेव का भी भावना ऐसा ही हुआ, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो ये मनभाव जब हुआ, मनभाव ऐसे मनभाव होते ही जो अपना पुत्र के प्रति जो वात्सल्य रस का जो संचार हुआ था वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो लुप्त हो गया, उसकी जगह संभ्रम भाव आ गया, श्रद्धा के भाव आ गए, ये परमेश्वर भगवान। तो इस कारण देवकी कृष्ण को अपना पुत्र के रूप में नहीं देख सका, अपना पुत्र के पालन पोषण के करने का या अपने पुत्र का रूप में दर्शन करने का भी मौका उनको नहीं मिला। परंतु मां यशोदा का वैसा नहीं, मां यशोदा का मनोभाव था कि ये कृष्ण मेरा लड़का है, मेरा बच्चा है। और कभी कभी ऐसा भी उनका मन में आता था कि शायद ये मेरा बच्चा नहीं है, और जब ऐसे मनोभाव आ जाता तो मन में बहुत कष्ट होता था, मेरा इतना प्यारा कृष्ण मेरा बच्चा नहीं है। कोई आदमी कहते हैं कि वसुदेव और देवकी का लड़का है, जन्म के पश्चात मेरे पास लाकर रख दिया कंस के भाई के मारे। परंतु ऐसे मनोभाव जो होता था वो कम समय के लिए, क्षण काल के लिए होता था, बाकी समय मनभाव ऐसा था कि कृष्ण अपना लड़का ही है, जैसे ये दामोदर लीला में हम देख रहे हैं। जशोदा भी अलुखलाद धाव मानम, माँ जशोदा को देखते हुए ही कृष्ण ने ये उखल से उतार कर भागा। अलुखलाद धाव मानम परामृष्टम अत्यंत ततो दृत्य गोपा, माँ जशोदा गोपी और भी पीछे पीछे कृष्ण को दौड़ने लगा। और जब पकड़ लिया कृष्ण को तो कैसा हुआ कृष्ण का मनोभाव, रुदंतं मुहुर् नेत्रं युग्मं मृजन्तम्, रोने लगा, मां मैं और कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे मत मारो। और मां यशोदा भी जब देखा उसका अलग बच्चा का मन में भय आ गया तो छड़ी को फेंक दिया, परंतु सोचा कि मैं सोचा कैसे सोचा, कृष्ण को डांटने लगा, तुम नंद महाराज के पुत्र हो, तुम्हारा ऐसा क्या आचरण है, ये तो बंदर जैसा आचरण है। तब कृष्ण बोला, अगर मैं बंदर हूं तो मैं वन में चढ़ूंगा। बंदर तो वन में रहता है, तो मैं भी चला जाऊंगा वन में। तो मां यशोदा का मन में तो भय हुआ, मैं तो घर में काम में व्यस्त रहूंगा और ये बच्चा अगर वन में चला गया क्या, अगर तो उसके कारण मां यशोदा ने सोचा कि इसको बांध के राख दे क्योंकि वो कहीं भाग ना जाए। तो ऐसे जो लीला विलास है, देखिए ये स्मरण करने से ही मन में कितना आनंद होता है, ये दर्शन करने से मन में कैसा भावना होगा, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर पाते। और असल में तो देखिए स्मरण और दर्शन में कोई अंतर नहीं है, पूर्ण विश्वास लेके जब स्मरण होता है तो वो दर्शन का ही भांति होता है, दर्शन का ही जैसा होता है। भक्त का मन में ये भगवान का लीला होता है, जो स्मरण होता है वो लीला ही होता है। ऐसे वर्णन किया गया है कि भगवान का लीला तीन जगह हो रहा है, एक तो वृंदावन गोलोक वृंदावन में जहां भगवान नित्य विराजमान है, और इस भौतिक जगत में जो भौम वृंदावन है, हर ब्रह्मांड में 14 भुवन है, हर ब्रह्मांड में 14 भुवन है, 7 ऊपर का और 7 नीचे का, और उसका बीच में जो मध्य ये है वो है सप्तम, ये है भूलोक, उसके ऊपर है भूबरलोक महरलोक जनलोक तपोलोक सप्तलोक, ये 6 लोग हैं, और इसका नीचे सप्त पाताल है, ताल अताल सुताल महाताल रसातल पाताल। तो ये जो भूमंडल जो है, भूलोक या भूमंडल जो है, ये हर भूमंडल में एक भारतवर्ष है, हर ब्रह्मांड में 14 भुवन है, 14 भुवन में से एक है भूमंडल या भूलोक, और हर भूमंडल में भारतवर्ष है, और हर भारत में वृंदावन है, और भगवान जब आते हैं तो वहां लीला विलास करते हैं। उस वो जो वृंदावन है, उस वृंदावन को भौम वृंदावन कहा जाता है, एक तो है गोलोक वृंदावन और ये है भौम वृंदावन। तो इस भौम वृंदावन में भगवान लीला विलास करते हैं, हर समय भगवान का लीला कहीं ना कहीं यहां हो रहा है, अभी भी किसी ब्रह्मांड में भगवान का जन्म हो रहा है अभी, क्योंकि इतने सारे ब्रह्मांड हैं, जैसे इसका वर्णन ऐसे किया गया है, जैसे देखिए सूरज यद्यपि यहां रात्रि है परंतु कहीं सूरज है ना, कहीं पृथ्वी का और कहीं दिन है, केवल दिन ही नहीं, इस समय ही कहीं सूरज का उदय हो रहा है, कहीं सूरज मध्य गगन में है, कहीं सूरज अस्तगामी है, ऐसे सूरज हर समय कहीं ना कहीं सूरज का स्थिति वैसे ही विस्तृत हुआ है। तो वैसा ही भगवान का लीला भी ये ब्रह्मांड भर चल रहा है, इस समय कहीं भगवान का जन्म हुआ, इसी समय कभी कहीं भगवान पूतना को संहार कर रहे हैं, कहीं और कहीं भगवान त्रिनावर्त सुर का संहार कर रहे हैं, धेनु का सुर, बकासुर, अघासुर, कहीं कंस का वध कर रहा है। ऐसे भगवान का लीला हर जगह, और कहीं भगवान का रासलीला हो रहा है। ऐसे सारा दुनिया भर, सारा ब्रह्मांड में ऐसे भगवान का लीला हर समय चल रहा है। यह है दूसरी लीला, तरह का लीला। और तीसरी कैसी है? भक्त का हृदय में, भक्त का हृदय में भी भगवान का लीला, शुद्ध भक्त का हृदय में भगवान का लीला हो रहा है। और ये ऐसा नहीं कि ये भगवान उनका मन में जो कुछ या हृदय में जो हो रहा है ये कल्पना है, नहीं, ये वास्तव है। भगवान का लीला भक्त का हृदय में जो होता है वो भगवान का ही लीला है। प्रेमांजन छुड़ित भक्ति विलोचनेन संत स्वदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब हमारा आंखें प्रेम के द्वारा रंजित हो जाता है, प्रेम अंजन छुड़ित भक्ति विलोचनेन, अर्थात भक्ति के द्वारा हमारे आंखें जब प्रेम प्यार से रंजित हो जाता है, तो संत स्वदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वो संत, वो शुद्ध भक्त निरंतर हर समय अपना हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। कैसे कैसे दर्शन होता है? श्याम सुंदर के रूप में दर्शन होता है, और जो रूप अचिंत गुण की आधार है, अचिंत गुण स्वरूपम। तो वैसे भगवान भक्त का हृदय में भगवान का लीला होता है। और ऐसे भगवान भक्त के साथ प्यार के संपर्क स्थापन करके भक्त को आनंद प्रदान करते हैं, और उस कारण भगवान जन्म लेते हैं। यद्यपि भगवान अजय है, अहम मूढ़ोऽयम नाभि जानाति अहम अजम अव्ययम्। यद्यपि मैं अजय हूं, अव्यय हूं, अपरिवर्तनीय हूं, उस भावना, ये धारणा मूर्ख के मन में नहीं होता है। परंतु जो भक्त हैं उनको क्या होता है? भक्त भगवान को, भक्त जानते हैं कि भगवान का जन्म, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। जो जिनको जिनको पता चल गया है, जो समझ गए हैं, जो पूर्ण रूप से जो जान लिया है कि भगवान का जन्म और कर्म कार्यकलाप दिव्य है, उन्होंने अपना शरीर जब त्यागते हैं तो उनको, और फिर वो शरीर त्यागने के बाद फिर इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है। त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्गं। अर्थात जिसको विश्वास हो गया है, जो जान लिए हैं कि भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य है, उनको मृत्यु के पश्चात इस भौतिक जगत में फिर वापस नहीं आना पड़ता। अर्थात उन्होंने मृत्यु के पश्चात भगवान के पास आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन में वापस चले जाते हैं। तो आप सोचिए, ये जो जन्म मृत्यु के जो चक्कर है, ये क्या हम चाहते हैं ये क्या अच्छा है, ये क्या चाहने का लायक है, ये इसको क्या, जन्म मृत्यु का जो चक्र है इसको क्या कहा जाता है, इसको संसार कहा जाता है। तो ये संसार जो चक्र है, इस चक्र का, इस चक्र से, संसार चक्र से उद्धार प्राप्ति होना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तो कैसे हम इस संसार चक्र से उद्धार प्राप्त हो सकते हैं? भगवान को स्वरूप पहचानने से बहुत आसानी से हम इस चक्र से मुक्त होकर भगवान के पास वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी को? यस बताइए।
जिस प्रकार भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, या जिस प्रकार से व्याख्या बताई गई है, वैसे ही योग माया और महामाया के बीच में योग माया ही महामाया है या उनमें से निकला हुआ कुछ?
बहुत अच्छा। योग माया और महामाया में कोई अंतर है, और अगर है तो कैसे अंतर? योग माया, माया जो है, ममो माया दुरत्ता है, भगवान कह रहे हैं कि माया मेरी माया है ना, ममो माया। और अर्थात माया भगवान का ही है, और इस माया का कार्य दो प्रकार का होता है। जो भगवत भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान को छोड़ दिए हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उनके लिए वो महामाया के रूप में इस भौतिक जगत में सजा देते हैं। और जोगो माया के रूप में माया भगवान के पास, भगवान के लीला में ले जाते हैं। माया असल में माया एक ही है, परंतु उसका इस भौतिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो महामाया, जब चिन्मय दृष्टिकोण से देखते हैं तो योग माया। इसका विचार ऐसे हो सकता है, देखिए एक चोर पुलिस को देखते हैं, पुलिस सिपाही, जब एक चोर पुलिस को देखता है तो क्या करता है, उसका मनोभाव कैसा होता है? पुलिस कोई भयंकर ये है, और पुलिस भी वो चोर को पीटते हैं, है ना, सजा देते हैं। और वही पुलिस जो जो कानून मानते हैं, जो सत नागरिक हैं, उस नागरिक को पुलिस रक्षा करते हैं। पुलिस एक ही है, परंतु चोर के लिए वो है दंड प्रदानकारी, और अच्छा आदमी के लिए वो है रक्षा करने वाला। और जब कोई राजा के साथ मिलने को जाना चाहते हैं तो पुलिस उसको राह दिखा के राजा के पास ले जाता है। तो वैसे ही हम किस, कैसे आचरण करते हैं, हमारा मनोभाव कैसा है, हमारा चेतना कैसे है, उसके अनुसार माया का, वृत्ति का प्रकाश होता है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। योग माया के द्वारा भगवान का योग माया जो है, ये भगवान का अंतरंग शक्ति है। तो भगवान के लिए जब कार्य होता है तो योग माया के रूप में होता है।
मधु केटक के केस में बताया,
हाँ,
योग माया शब्द मधु केटक के केस में बताया, बाकी भी महामाया।
अच्छा, हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे।